शान ने बुरा सा मुंह बनाया। आरवी ने सर हिला दिया, फिर उसको देखकर अब धीमी आवाज में बोली, आप ऐसे उस वक्त यहाँ क्यों आए? शान ने उसका सवाल सुनकर जवाब देने की जगह एकाएक उसको खींचकर अपने सीने से लगा लिया, जिससे आरवी एक बार फिर चौंक गई। शान ने उसको कस के अपनी बाहों में भर लिया और आरवी हक्की बक्की स्तब्ध सी उसकी बाहों के घेरे में कैद खड़ी रही। शान कुछ पल यूं ही उसको अपनी बाहों में भींचे खड़ा रहा, फिर उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए सर्द आवाज में बोला, मैं तुम्हें महसूस करने के लिए तड़प रहा था, पर आज ज्यादा हो गई थी इसलिए ऐसे आना पड़ा। आरवी के चेहरे के भाव अब कुछ सामान्य हो गए, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस शान की बेचैनी वो महसूस करती रही। शान की गर्म सांसें उसके गर्दन और पीठ को छू रही थीं, उसकी धड़कनें सामान्य से तेज चलने लगी थीं। अजीब से एहसास मन पर छाने लगे, पर वो स्थिर बनी रही। शान की खामोशी से उसकी खुशबू को अपनी सांसों में बसाता रहा। काफी देर तक वो एक दूसरे से लिपटे खड़े रहे। शान ने जी भरकर उसको महसूस किया, फिर उसके बाद उसने आरवी को खुद से अलग किया और उसका हाथ थामकर बालकनी की रेलिंग से टिककर बैठ गया। साथ में उसने आरवी को भी बिठा लिया और साइड से उसको हक कर लिया। आरवी ने ना तो कुछ कहा और ना ही विरोध ही किया। कुछ पल उनके बीच गहरी खामोशी छाई रही। रात के उस सन्नाटे में दोनों की धड़कनों की आवाज गूंजती रही। फिर आखिर में आरवी ने ही बात शुरू की, आप ठीक हैं? शान जो रेलिंग से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था, आरवी का सवाल सुनकर उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो आरवी सर उठाकर परेशान निगाहों से उसे ही देख रही थी। उसको अपनी फिक्र करते देखकर शान को काफी अच्छा लगा। उसने प्यार से उसकी नाक को अपनी उंगली से सहलाया और मुस्कुराकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस इन पलों को जियो, पता नहीं किस्मत दोबारा हमें इन पलों को नसीब होने भी दे या नहीं। शान की बात ने एक बार फिर आरवी को दुविधा में डाल दिया। वो परेशानी से उसको देखते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना, बस इसलिए थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शान ने कस के उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। आरवी कुछ पल परेशान सी उसको देखती रही, फिर उसने शान के सीने पर अपना सर रख दिया। एक बार फिर उनके बीच गहरी खामोशी छा गई। फिर आरवी सर उठाकर उसको देखने लगी। शान का चेहरा एकदम शांत था। चांद की रोशनी में उसके चेहरे पर अलग की नूर बिखरा हुआ था। चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ सुकून फैला हुआ था। आरवी कुछ पल खामोश सी उसको देखते हुए जाने क्या सोचती रही, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन शान को बंद आंखों से ही एहसास था कि उसकी निगाहें उसी पर ठहरी हुई थीं। वो इंतजार करता रहा, पर जब आरवी ने कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी आंखें खोली और आरवी को देखकर मुस्कुराकर बोला, कुछ कहना है तो कह दो, इतना सोचने की जरूरत नहीं। कुछ पूछूं आपसे? आखिर में आरवी ने अपनी खामोशी तोड़ ही दी। शान ने सर हिलाते हुए हामी भरी, पूछो। क्या इस प्रेम कहानी का अंत यही होगा? शान कुछ पल खामोश बैठा गहरी निगाहों से आरवी के बेचैन व्याकुल निगाहों को देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम क्या चाहती हो? मेरे चाहने से क्या होता है? स्टोरी आपकी, प्ले आपका, जो आप चाहेंगे वही तो होगा, आरवी ने मायूसी से जवाब दिया। और जैसे ही उससे दूर होने लगी, शान ने वापस उसको अपनी बाहों में भींच लिया। आरवी फिर उदास निगाहों से उसको देखने लगी। शान ने उसकी निगाहों में झांकते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, कहानी हमारी है और इसमें आगे जो तुम चाहोगी वही होगा। आरवी चुप से उसको देखने लगी। कुछ पल बाद शान ने फिर से आगे कहा, बोलो, कैसा अंत चाहती हो तुम हमारी प्रेम कहानी का? आरवी अब भी खामोश से उसको देखती रही, पर बोली कुछ नहीं। शान की आंखों में बेचैनी छाने लगी। उसने आरवी के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और व्याकुलता से बोला, आरवी, क्या अब भी तुमने मुझे माफ नहीं किया? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि तुम मुझे माफ करके अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका नहीं दे सकती? शान की आंखों में आरवी को खोने का डर झलकने लगा था। आरवी कुछ पल खामोशी से उसको देखती रही, फिर शांत लहजे में गंभीर स्वर में बोली, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर सच ये नहीं होता, सच में डैड नहीं सब किया होता, तो क्या आप मुझे अपनी जिंदगी में जगह देते, प्यार करते मुझसे? या आपकी नफरत खत्म सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आपके गुनाहगार डैड नहीं कोई और था? शान का सवाल सुनकर उसने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए जवाब दिया, मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं करता था आरवी, बल्कि चाहता था कि तुम नफरत करो मुझसे और दूर रहो मुझसे, क्योंकि जानता था कि हम फ्यूचर में साथ नहीं रह सकेंगे। मेरी लाइफ का कोई भरोसा नहीं था, और अगर आज तुम्हें मेरे या मेरे प्यार की आदत लगवा देता, तो मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे पीछे तुम अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करो। बस इसलिए मैंने हर वो कोशिश की जिससे तुम्हारे मन में अपने लिए नफरत पैदा कर सकूं, तुम्हें खुद से दूर रख सकूं, ताकि मेरे जाने का तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर ना पड़े और तुम मेरे बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और खुश रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हें चाहकर भी कभी कोई खुशी नहीं दे सका। तो अब क्यों नहीं जाने दे रहे आप मुझे खुद से दूर? क्योंकि अब हालात वैसे नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिता भी सकता हूँ और तुम्हारे हिस्से की हर खुशी तुम्हें दे सकता हूँ। तब या तो मेरी मौत होती या सजा, और दोनों ही सूरतों में मुझे तुमसे दूर होना ही था। पर अब तो मैं सही सलामत तुम्हारे सामने हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी अपनी मोहब्बत के साथ बिताना चाहता हूँ। माना मैंने चाहे किसी भी वजह से वो सब किया हो, पर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मुझे एहसास है अपनी गलतियों का। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती अपनी गलतियां सुधारने का? शान जवाब के इंतजार में आरवी को देखने लगा। आरवी कुछ पल खामोशी से उसको देखती रही, फिर उसके गाल को अपनी हथेली से छूते हुए बोली, अगर कल शेखर अपर्णा की नाराजगी दूर करके उसको अपने प्यार पर भरोसा दिलाने में कामयाब हुआ, बीती बातें भुलाकर उसको नई तरफ से उनके रिश्ते को शुरू करने की वजह अपर्णा को दे सका, तो अपर्णा उसे माफ कर देगी। उनकी प्रेम कहानी का अंत उनकी जुदाई नहीं, उनके मिलन से होगा। कल शेखर अपनी अपर्णा की नाराजगी जरूर दूर करेगा, और उनके कहानी का अंत मैं नहीं वो खुद लिखेंगे। शान ने दृढ़ता से जवाब दिया और मुस्कुरा दिया। आरवी फिर उससे दूर होने लगी, पर शान ने उसको अपनी आगोश में भरते हुए कहा, क्यों बार बार दूर भागती रहती हो? इतना रिस्क लेकर मिलने आया हूँ तुमसे, कुछ पल तो आराम से मेरे साथ बैठो, नींद आ रही है मुझे। अंदर आकर आप भी सो जाइए, कल बहुत काम होगा आपको, और जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, फ्रेश और एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, फिर काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। आरवी उससे अलग होने की कोशिश करने लगी, पर शान ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसको अपने सीने से चिपका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे नींद की नहीं तुम्हारी जरूरत है, और तुम चिंता मत करो, कल कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, सब अच्छा होगा, और ये वादा है मेरा तुमसे कि तुम कल के दिन को कभी भूल नहीं पाओगी। आरवी अब एकदम शांत हो गई, और उसके सीने पर अपना सर टिकाए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद शान ने फिर से कहा, आरवी कल बारिश वाला सीन कर लोगी ना? मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सब आपके मुताबिक ही हो, और मैं जरा भी ना घबराऊं। शान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। आगे दोनों की कोई बात नहीं हुई। कुछ देर बाद शान को आरवी के गहरी नींद में होने का एहसास हुआ, तो उसने उसको खुद से अलग किया और अपनी बाहों में उठाकर अंदर चला आया। उसने ध्यान से उसको बेड पर लेटाया और उसके माथे पर बिखरे बालों को अपनी हथेली से पीछे करते हुए प्यार से उसके माथे को चूम लिया और मुस्कुराकर बोला,
हैप्पी एनिवर्सरी जैन, आपका एनिवर्सरी का स्पेशल गिफ्ट इंतजार कर रहा है आपका। बस कुछ देर और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और हम हमारे रिश्ते की एक खूबसूरत सी शुरुआत करेंगे। शान ने उसको चादर से अच्छे से ढका, फिर अंशु के भी माथे को चूम लिया और बालकनी के दरवाजे को बंद करते हुए वापस चला गया। अगला दिन भी शुरू हो गया। आज कोई रिहर्सल नहीं थी, बस सब अपने अपने तरफ से खुद को परफेक्ट करने की कोशिश में लगे थे। शान सुबह से ही काफ़ी बिजी था, जिस वजह से कल रात के बाद वो आरवी से सीधे स्टेडियम में मिला था जहां उनका प्ले होने वाला था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, आगे की रो में सब फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे। पूरा स्टेडियम ऑडियंस से खचाखच भरा हुआ था, सारी सीट्स फुल थीं। जिन्हें यहां मौका नहीं मिला था, अब वो इंतज़ार में थे कि प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव हो और वो उसे देखें। ऑडियंस में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा था, फैमिली मेंबर्स भी काफ़ी एक्साइटेड थे। बैकस्टेज पर सब अपना अपना गेटअप लेकर रेडी थे। रश्मि चेंजिंग रूम में बैठी वहां लगी स्क्रीन पर लाइव उनके प्ले के देखने वाली थी। स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट सब वहां मौजूद थे। प्ले शुरू होने का वक्त हुआ तो रेहान हाथ में माइक लेकर स्टेज पर आ गया। पहले उसने पूरी ऑडियंस का अभिवादन किया, फिर आगे बोला, आप सब जिस नफ़रत भरे प्यार की अनोखी दास्तां को देखने आए हैं, उसे देखने से पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं, ताकि आप दिल से प्ले और उसके किरदारों से जुड़ सकें। इतना कहकर वो एक पल रुका, फिर आगे बोला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नफ़रत भरी मोहब्बत की ये दास्तां कोई नॉर्मल प्रेम कहानी नहीं है। यहाँ अगर आपको बेपनाह प्यार देखने को मिलेगा, तो बेपनाह नफ़रत भी दिखाया जाएगा, और ये कहानी नफ़रत से प्यार तक की दास्तां है। कहानी है दो दिलों की, जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। इस कहानी का मेन लीड शेखर राजवंश है, जिसने कभी किसी से बेइंतहा मोहब्बत की थी, पर उसको मोहब्बत में सिर्फ धोखा, छल फरेब, दर्द और घुटन मिली, और तभी से प्यार, मोहब्बत, शादी जैसे रिश्तों पर से उसका विश्वास उठ गया। एक लड़की के दिए धोखे ने उसके मन में लड़कियों को लेकर ये सोच पैदा कर दी कि दुनिया की हर लड़की धोखेबाज है, उनकी नज़रों में सच्ची फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कुछ है जो मायने रखता है, तो वो है पावर, पैसा, रुकना, दौलत, शोहरत और जिस्मानी खूबसूरती। एक लड़की ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया, और उसने हर लड़की को अपने इस्तेमाल की वस्तु समझ लिया। एक सीधा साधा लड़का प्यार में मिले धोखे से कैसनोवा बन गया। जिस लड़की का दिल उस पर आता, वो उसे खुश करके अपना और उसका मन बहला लेता। पर उसकी एक बेटी थी, जिसमें जान बसती थी उसकी।